मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 20 मई 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करना चाहूंगा अपने उन दो नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं प्रसून त्रिपाठी चिनौर उत्तर प्रदेश से और मकवाना विशाल राजकोट गुजरात से। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आपसे अब जो 2 जून को आपकी प्री एग्जाम होने वाले हैं उसको देखते हुए स्वास्थ्य के बारे में आपको कौन कौन सी बातें अभी से अपने व्यवहार में ले आनी चाहिए, इस पर थोड़ी चर्चा करूंगा। लेकिन आइए इससे पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। इनफैक्ट सच पूछे तो घटनाएं कुछ ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बातें तो की ही जा सकती हैं। कल हमारा चुनाव संपन्न हो गया, कल चुनाव पूरे हो गए। इस चुनाव की क्या हाइलाइट्स रही, मैं थोड़ी सी बातें आपको बताना चाहूंगा ताकि अगर कभी कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते, सीधे सीधे तो देखिए इस पर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं अगर आपके दिमाग में वो दर्ज हैं तो आप इनका इस्तेमाल दूसरे प्रश्नों के उत्तर के तहत भी कर सकते हैं। देखिए, इस बार के पूरे चुनाव में आपने देखा होगा कि जो सत्तारूढ़ सरकार थी एनडीए, उसने जो सबसे बड़ा मुद्दा जो उठाया, जिस मुद्दे के आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा, 2 मुद्दे कह सकते हैं और ये दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे से मिले हुए भी हैं। एक नाम आप उसे दे सकते हैं, राष्ट्रवाद जिसे हम कहते हैं नेशनलिज्म, और नेशनलिज्म पर हम लोगों ने काफी बातें की हैं, तो आप सिविल सर्विस के दृष्टि से नेशनलिज्म को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मान सकते हैं। दूसरी बात उसी के साथ जुड़ी हुई थी, सुरक्षा, देश की सुरक्षा। और नो डाउट कि जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो विदेशी आक्रमण से सुरक्षा और दूसरी आतंकवादी गतिविधियों से सुरक्षा, ये 2 मुद्दे एनडीए ने इन मुद्दों को उठाया। और जो विपक्ष की पार्टियां थी, विपक्ष की पार्टियों ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें कहीं, लेकिन जो सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी थी कांग्रेस, उसने एक प्रकार से जो वर्तमान सरकार है उसकी आलोचना के मुद्दे को सबसे ज्यादा स्थान दिया और उसमें भी व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री की आलोचना। सामान्यतया इससे पहले जो चुनाव होते थे उनमें इस तरह जो मुद्दे होते थे इतने सीमित नहीं हो जाते थे। जैसे 2014 का आप चुनाव लीजिए तो उसमें था सबका साथ सबका विकास, तो एक तो सबको लेकर चलने की बात थी और दूसरा सबके विकास करने की बात थी। तो हमारे देश के जो बहुत ही बर्निंग इश्यूज हैं, जैसे रोजगार की बात है, विकास की बात है, कृषि डेवलपमेंट की बात है, इन पर इस बार बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं हुई। घोषणा पत्रों में जरूर शामिल किया गया, तो राजनीतिक विश्लेषक इस कमी को स्वीकार करते हैं, कमी को आइडेंटिफाई करते हैं। मित्रों, आपने देखा होगा कि इस चुनाव में थोड़ी सी राजनीतिक जो झुकाव रहा वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा खैरात देने के रहा, या यूं कह लीजिए कि धन बांटने का रहा, चाहे वो 72,000 रुपए सालाना देने की बात हो, चाहे किसानों को प्रति एकड़ धन देने की बात हो। यूबीआई की बात तो उतनी नहीं आई, उसमें कुल मिलाकर के ये कहा गया कि जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वो किसी भी श्रेणी के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, तो उन्हें सरकार मदद देगी, जिसे कांग्रेस ने एक तरह से न्याय का नाम दिया। तीसरी बात आपने ये भी महसूस की होगी कि इस बार के चुनाव में जो भाषाई तीक्ष्णता थी, जो कटुता थी, वो कुछ ज्यादा ही रही। मतलब जो आलोचना प्रत्यालोचना की जो भाषा थी व्यक्तिगत स्तर पर थी और वो कुछ ज्यादा कटुता से भरी हुई थी। आपने ये भी देखा होगा, देखा क्या होगा तो आपके सामने गुजराई है कि इस बार का जो इलेक्शन है बहुत लंबा खिंचा, 7 चरणों में इस बार के इलेक्शन हुए। तो कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि नहीं, चुनाव इतना लंबा नहीं होना चाहिए। और एक नई बात यह हुई कि पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के एक दिन पहले ही वहां की हिंसात्मक घटनाओं को देखते हुए चुनाव प्रचार समाप्त कर दिया गया, ये चुनाव के इतिहास में पहली बार हुआ। तो कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको यूं ही बताए हैं, हो सकता है कि शायद कहीं कुछ काम आ जाए। फ्रेंड्स, आज आपको करंट कंटेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है, स्वच्छ भारत मिशन की असफलता। ये जो आर्टिकल है हमारे अरविंद पनगढ़िया जी ने लिखा है, अरविंद पनगढ़िया जी के नाम से आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। ये हमारा जो नीति आयोग है उसके पहले वाइस चेयरमैन रहे हैं और अमेरिका में जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है वहां के इकोनॉमिस्ट हैं, बेसिकली इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये आर्टिकल है। मैं देखिए अरविंद पनगढ़िया जी के बारे में इसलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया कि कुछ समय के बाद हम दरअसल भूल जाते हैं कि इनका क्या स्टेटस है। तो अरविंद पनगड़िया जी का अगर कोई आप स्टेटमेंट सुनते हैं या कोई आर्टिकल अगर आपको पढ़ने को मिलता है तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। इसमें उन्होंने एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक तो उन्होंने आंकड़े देकर के बताए हैं कि देखिए जब इस मिशन की शुरुआत हुई थी उस समय 38% लगभग बता रहा हूं 38% लोग के पास ही केवल शौचालय की सुविधा थी। अब यह लगभग 99% लोगों के पास हो गई है और हमारे यहां के लगभग 90% जो गांव हैं वो शौचालयों से युक्त हो गए हैं। यूं कह लीजिए कि खुले में जाने से के आदतों से मुक्त हो गए हैं, यानी कि उनके पास शौचालय की सुविधा हो गई है। इस आर्टिकल के आखिरी में उन्होंने एक प्रश्न उठाया है, उस पर मैं आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वो ये है कि पिछले कुछ समय से यह देखा गया है जैसे शौच से मुक्त हुए गांव लगभग 95.6% हो गए थे। एक ऐसा समय था कि हम 95.6% तक पहुंच गए थे। उन्होंने कहा अब यह गिरकर 90.7% रह गया है। पॉइंट को हटा दीजिए, आप कह लीजिए कि पहले 96% था, अब वो गिरकर के 91% रह गया है। चलिए राइट, ये एक चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब है कि लोगों के यहां शौचालय हैं लेकिन वो धीरे धीरे अब इनके उपयोग से अपने आप को अलग करते जा रहे हैं, यानी कि वो पुराने ढर्रे पर की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि खुले में शौच। और ये बहुत ही अलार्मिंग है, ये बहुत ही आप ये कह लीजिए कि चिंताजनक बात है और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इन्होंने अपने इस आर्टिकल में बताया है कि इस तरीके से ग्रामीणों के व्यवहार में परिवर्तन जो लाया जाना चाहिए उसकी अलग से कोशिश होनी चाहिए, विशेष कोशिश होनी चाहिए, नहीं तो हमने जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है वह एक प्रकार से बेकार जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का आप यूं कह लीजिए कि क्वेश्चन भी बन सकता है। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, जो खासकर इस बात पर है कि अब कुछ ही दिन आपके एग्जामिनेशन के, प्री एग्जामिनेशन के रह गए हैं, 12-13 दिन। तो आपको मित्रों स्वास्थ्य के बारे में विशेष रूप से सावधानी बरतनी शुरू कर देनी चाहिए। इसके बारे में आप कोई भी लापरवाही न करें। देखिए अगर स्वास्थ्य में जरा भी गड़बड़ी हुई, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, तो मान करके चले कि प्री एग्जामिनेशन जिस तरीके का है उसमें आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आपको क्या क्या करना चाहिए, बहुत सी बातें आप जानते हैं, मुझे इस बात के लिए क्षमा कीजिएगा कि जानते हुए भी मैं आप लोगों को कुछ और भी बताना चाह रहा हूं, यूं कह लीजिए कि अंडरलाइन करना चाह रहा हूं जो आप जानते हैं उसी के बारे में, या उसके महत्व को फिर से याद दिलाना चाह रहा हूं। मित्रों गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, चारों तरफ लू चलने शुरू हो गई है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप लू और इस गर्मी से बचें, हर हालत में बचें। चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों न हो धूप में न निकले, और अगर निकलने की मजबूरी ही हो तो पूरे अपने सिर को अच्छे तरीके से ढक करके निकले ताकि धूप और लू से आपका बचाव हो सके। और जैसे ही अगर आप धूप से लौटते हैं तुरंत पानी न पिएं, थोड़ी देर वेट करें और इसके बाद ही पानी पिएं, और कोल्ड ड्रिंक को बिल्कुल कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। और ठीक इसी तरह से फ्रिज के पानी से अगर आप अपने आप को बचा सके तो बेहतर होगा। घड़े में पानी रख करके देखिए, उसका स्वाद बेहतर हो जाता है और ठंडा भी फ्रिज से ज्यादा होता है, और वो घड़े का पानी चाहे कितना भी ठंडा क्यों ना हो आपको नुकसान नहीं करेगा। फ्रिज के पानी के साथ सबसे बड़ा संकट है कि अगर उसने जरा भी गला पकड़ लिया तो मान करके चलिए कि फिर आपको फीवर हो सकता है, फिर खांसी हो सकती है, बहुत ज्यादा आप संकट में पड़ जाएंगे। दूसरी बात यह भी है दोस्तों कि अभी आप अपने डाइट सिस्टम को ठीक करें। डाइट सिस्टम, तली चीजें खाना बिल्कुल बंद कर दें, सादा भोजन करें, जितने में पेट भरता है उससे थोड़ा कम ही खाएं, थोड़ा कम खाएं, और एक बार में ज्यादा न खाएं। बेहतर होगा कि थोड़ा थोड़ा बार बार खा लें, लेकिन एक बात का और भी ध्यान रखें कि ज्यादा समय तक भूखे भी न रहें, क्योंकि फिर पेट में जो है गैसेस बननी शुरू हो जाएंगी, पेट में एसिड बनना शुरू हो जाएगा, उससे भी आपको अपने आप को बचाना है। खाने में प्याज है, नींबू है, मौसमी फल है जैसे तरबूज वगैरह खूब आने लगे हैं, ककड़ी खूब आने लगी है, इन सबको इम्पोर्टेंस दें। साथ ही मट्ठा पिएं, नींबू का शरबत पिए, आम का पना पिए। बिहार वगैरह में, उत्तर प्रदेश में तो सत्तू बहुत लोकप्रिय है। सत्तू सच पूछे तो वो गर्मी की एक प्रकार की आपकी मेडिसिन ही है, उसका इस्तेमाल पर्याप्त करें। नींद में कटौती न करें। याद है मैंने पाया है कि जब एग्जामिनेशन नजदीक आने लगते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक तो स्टूडेंट की नींद वैसे ही गायब होने लगती है चिंता में, दूसरा यह होता है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा देर तक पढ़ो, तो इसके कारण वो नींद से समझौता करने लगते हैं। मित्रों, नींद से बिल्कुल भी समझौता न करें। जो आपकी आदत है 7 घंटे 7.5 घंटे की पर्याप्त नींद लें, क्योंकि इसका संबंध सीधे सीधे आपकी मानसिक ताजगी से है। दोस्तों, हर उस काम से बचिए, हर उस सोच से बचने की कोशिश कीजिए जो आपके दिमाग में तनाव पैदा करते हैं और उलझने पैदा करते हैं। वहां जाने से बचिए, ऐसे टॉपिक पर बात करने से बचिए, अपने को हटा लीजिए और दिमाग में अनावश्यक बातें बैठे ठाले लाइए भी मत कि अरे एग्जाम है और नहीं होगा तो क्या होगा और फिर लोग क्या कहेंगे। इनका कोई अर्थ नहीं है, ये फालतू के दिमाग के फितूर हैं। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, और इसका फैसला तो इस बात से होगा कि हम कितने समर्पण के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आपका जो फोकस है, पूरा का पूरा फोकस अपनी तैयारी पर होना चाहिए, लेकिन तैयारी पर फोकस करने के साथ ही साथ इस बात पर भी होना चाहिए कि मेरा शरीर और मेरा मस्तिष्क दोनों ही बिल्कुल स्वस्थ हों। तो मित्रों, इन सब बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आप ये बिल्कुल मत समझिए कि अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई या तैयारी बहुत अच्छी हो गई तो वही सफलता का एकमात्र आधार होगी। नो डाउट कि वो तो होना ही चाहिए, लेकिन यदि आपने अपने स्वास्थ्य को जरा भी इग्नोर किया तो आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, और मेरा विश्वास है कि आप कीमत चुकाना पसंद नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, ये राष्ट्रीय सहारा का है और इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। ये है फैजान मुस्तफा साहब का, और मैंने इनके बारे में कई बार आपको बताया भी है। ये बहुत अच्छा लिखते हैं, महिला आयोग पर इन्होंने लिखा है। लास्ट का जो हिस्सा है, सेकेंड हाफ इसका हिस्सा है, वो आपके बहुत काम का है, उसमें से आप कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। दोस्तों, ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं केबी मीना, रुद्रेश शर्मा, भारती साहू और वीरेंद्र मेहता। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।